शांति, ओम शांति। रचयिता बाप जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप है, वो रचयिता ही आकर के अपनी रचना का भेद बताते हैं। मनुष्य न ईश्वर को जानते हैं, अर्थात न रचयिता को जानते हैं, न ही उनकी रचना के भेद को जानते हैं। तो क्या भेद बताते हैं रचयिता बाप अपनी रचना का, कि इस मनुष्य सृष्टि की जो धुरी है वो मनुष्य है। मनुष्य का जब उत्थान होता है, मनुष्य जब श्रेष्ठ बनता है, सतो प्रधान बनता है, तो सारी सृष्टि सतो प्रधान होती है। और जब मनुष्य का पतन होता है, तमो प्रधान बन जाता है मनुष्य, तो सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है। और सारी सृष्टि माना मनुष्य के साथ पशु पक्षी प्राणी मात्र, साथ साथ प्रकृति, सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अब सबको सतो प्रधान बनाने के लिए पहले मनुष्य को सतो प्रधान बनाते हैं बाबा, और जब मनुष्य सतो प्रधान बन जाता है तो फिर सब कुछ अपने आप सतो प्रधान बन जाता है, है ना। कई पूछते हैं मनुष्यों को तो भगवान बनाते हैं, परंतु फिर जानवरों का क्या होगा, प्रकृति का क्या होगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं जैसे बीज को पानी देते हैं तो पेड़ को अपने आप मिल जाता है, पेड़ को के पत्तों को पानी देने की जरूरत नहीं है। तो मनुष्य सुधर जाए तो सारा सब कुछ सुधर जाए। वैसे तो बाबा कहते हैं सब ड्रामा अनुसार होता है, उत्थान भी पतन भी, लेकिन फिर भी कोई तो निमित्त बनता है ना। और मनुष्य में भी स्त्री और पुरुष है, और उसमें भी बाबा कहते हैं स्त्री जो है वो धुरी है, अगर उसका पतन हुआ तो पुरुष का भी पतन हो जाता है, और फिर सारे संसार का पतन होता है। तो फिर अगर उत्थान करना है तो पहले स्त्री का उत्थान होना है। इसलिए बाबा माताओं बहनों को इतना उठाते हैं। माताएं धुरी के रूप में है, जैसे धुरी होती ना, वो नीचे जाती है तो सब नीचे, और वो ऊपर जाती है तो सब ऊपर। इसीलिए बाबा ने ये शिव शक्ति अवतार कहा है। शिव शक्तियां ही फिर से भारत खास और विश्व को सतो प्रधान सतयुग बनाएंगे। तो आज की बाबा की मुरली सारी ही रचयिता बाप ने अपनी रचना का भेद खोला है। अब ये कौन दे सकता है भगवान के सिवाय, और तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो फिर कैसे बनेंगे सतो प्रधान तमो प्रधान से, तो बाबा कहते हैं सहज ज्ञान और सहज राजयोग से। इसी सहज ज्ञान और सहज राजयोग से तुम्हारा फिर से उत्थान होता है, और उसका यादगार है गीता। तो गीता द्वारा है कि कैसे सारे विश्व का फिर उत्थान होता है, जो भगवान डायरेक्ट आकर ज्ञान देते हैं, वही फिर शास्त्र गीता बनता है। तो आज बाबा ने कई राज खोले हैं, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 5/1/2026 है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, कैसे बनते हैं मनुष्य से देवता? बाप की श्रीमत से। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? क्यों हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान है सतयुग में, और कलयुग में सब कुछ तमो प्रधान है? तो बाबा कारण बताते हैं क्यों सबसे अच्छी सतो प्रधान होती है हर चीज। उत्तर है, क्योंकि वह मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, किसी भी बात की कमी नहीं होगी। कलयुग में तो इसकी कमी है, ये कमी है, वो कमी है, ये मिलावट वाला है, वो मिलावट वाला है, तो वो कमी और मिलावट आर्टिफिशियल, यही कलयुग में है। और सतयुग में सब कुछ सतो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता है। उस समय क्या था, भारत में कैसे गेहूं मंगाई अमेरिका से, फिर और भी कई चीजों की खूट पड़ गई, तो फिर कभी कुछ जापान से मंगाया, कुछ कहां से मंगाया, तो भारत ने और देशों से मंगाया। लेकिन बाबा कहते सतयुग में किसी और देश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी ना सरकार में, सरकार देखती है ना कि इस चीज की खूट है या नहीं मिल रहा है, तो फिर विदेश से इंपोर्ट करती है। अब सतयुग में थोड़ी ये सब होगा, जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अप्राप्त, सब कुछ प्राप्त है, और कोई और देश थोड़ी होंगे जिनसे कोई इंपोर्ट करके मंगाना पड़ेगा। तो कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता है। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है। ब्रह्मा की आत्मा जिस शरीर में है वो जीव आत्मा है, तो ये शरीर जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। ब्रह्मा तन में ब्रह्मा की आत्मा भी है, तो शिव बाबा परम पिता परमात्मा की आत्मा भी है। तो ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। दादा माना बड़ा भाई, और बाप माना शिव बाबा पिता, इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणी की है वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं। हाँ, बाप खुद कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं जिनमें प्रवेश किया है उनके लिए, कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है किसकी, ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो, बाबा के पास किस लिए आते हो? भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनने। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। बाबा क्यों आते हैं? बाबा आते ही हैं तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। क्या अर्थ होता है मनुष्य से देवता बनना? कहीं पूछते ना, आपका लक्ष्य क्या है, संस्था का लक्ष्य क्या है? तो हम कहते हैं मनुष्य से देवता बनना। परंतु देवता बनना का मतलब क्या है? तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। अब देवताएं तो निर्विकारी है, तो निर्विकारी बनाएंगे तब तो देवता बनाएंगे ना। तो विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु सब मनुष्य कैसे हैं? दैवी गुण वाले। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वो है ईश्वरीय बुद्धि और ये है आसुरी बुद्धि। सतयुग में है ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि ने के द्वारा कैसे इतने श्रेष्ठ देवता बनते हैं और ये है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान या भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तकें कितनी है? कितनी पुस्तकें हैं भक्ति की? और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? एक, बस एक। जो मेन ज्ञान है वो तो एक ही गीता है। ज्ञान का सागर स्वयं बाप है, उनका पुस्तक भी एक ही होना चाहिए ना। वहां तो सुनाने वाले अनेक है, तो अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान सुनाने वाला केवल एक बाप है, तो उनकी पुस्तक भी तो एक ही होनी चाहिए ना। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होना चाहिए। हर धर्म पिता का पुस्तक भी एक ही होता है, ताकि और ने जो सुनाया फिर और भी बन जाते एक किताब शास्त्र। उनका पुस्तक भी एक होना चाहिए, उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। इसलिए हर धर्म का एक ही मुख्य शास्त्र है। क्रिश्चियंस का कहेंगे भाई बाइबल है, इस्लाम धर्म का कहेंगे कुरान है, फिर बुद्धिज्म का दंपद है, हर एक का अपना अपना है। तो पर है मुख्य एक पुस्तक, तो उनको रिलीजियस बुक कहते हैं। पहला रिलीजियस बुक है गीता। सबसे नंबर वन रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो वही गीता का ज्ञान जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म न कि हिंदू धर्म। तो पहला धर्म जो सनातन धर्म है वो देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई श्री कृष्ण ने। दोनों बातें गलत हो गई। गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई श्री कृष्ण ने। वास्तव में शिव बाबा ने गीता का ज्ञान दिया और उससे स्थापन हुआ आदि सनातन देवी देवता धर्म। कोई से पूछो तो यही कहेंगे, अच्छा कब सुनाई गीता, कब शुरू हुआ, तो कहेंगे सब परंपरा परंपरा। हाँ यही कह देंगे। तो कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये श्री कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में भी शिव भगवानोवाच है ही नहीं, कहीं भी नहीं है शिव भगवानोवाच। श्रीमद् श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको तो सहज समझ में आएगा, ये बाबा का ज्ञान सहज समझ में आएगा। अगर गीता का अध्ययन किया हुआ है ना, तो ये ज्ञान भी बहुत सहज समझ में आ जाएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो भी अभी बाप तुमको दे रहे हैं इसी से ही देवता बने हैं। राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। क्यों नीचे गिरे? काम महाशत्रु के कारण। तो इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर से उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो है सभी आत्माओं का बाप। ये फिर है ब्रह्मा, क्या है? शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। और ब्रह्मा फिर क्या है? ब्रह्मा है बेहद का मनुष्यों का बाप। बेहद के भी मनुष्य है ना, उनका बाप ब्रह्मा, और आत्माओं का बाप शिव बाबा। मनुष्यों का बाप नाम ही है प्रजा पिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, चलो प्रजा पिता तो है, जगत पिता भी कहते हैं, लेकिन इनके पिता का नाम बताओ, तो बाबा कहते हैं तो मुंझ पड़ेंगे ना? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो क्रिएशन है ना, रचना है, तो उनका भी तो कोई पिता होगा ना, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप कौन है? निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में देवताएं दिखलाते हैं, दिखाएंगे ना चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो कहाँ दिखाते? बादलों में, हम वो सूक्ष्म वतन के वासी हैं। तो देवताएं सूक्ष्म वतन में दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं, अब उनको तो अपना शरीर तो होगा ना, भल वो आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, उनको अपना शरीर तो होगा ना, वो है सदैव निराकार। परमात्मा कौन है? सदैव निराकार परम पिता परम आत्मा। तो बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है कि हम आत्मा निराकार शिव परमात्मा के बच्चे हैं, ये आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। परम पिता परम आत्मा, शिव बाबा उस परमात्मा के लिए क्या बोलती है? परम पिता परम आत्मा। तो कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अलफ और बे। अलफ परमात्मा, बे उसकी रचना बादशाही। अब पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि तो है नहीं। आजकल तो दिखाते शिवलिंग पर भी ताज दिखाएंगे, मुख भी दिखाएंगे, ऊंचे भी देते हैं, पता नहीं क्या बना दिया शिवलिंग को। तो बाबा कहते हैं वास्तव में उनको कोई ताज तो है नहीं, वो तो इस दुनिया में तो राज्य करते नहीं है, उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वो तो ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना, सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। जो भी जो जड़ बीज होते हैं, झाड़ होते हैं, उनके बारे में तो पूरी एक स्टडी है, विज्ञान का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बॉटनी, उसमें सारे झाड़ और बीज उसके बारे में ज्ञान होता है। तो बाबा कहते हैं वो तो तुम जानते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, भल माली नहीं हो। वो माली तो वैसे सबको जानते हैं, हम कोई माली नहीं है, परंतु समझ तो सकते हैं ना। क्या समझ सकते हैं? बीज और झाड़ के बारे में कि कैसे बीज डालते हैं और उनसे कैसे झाड़ निकलता है, ये तो सब जानते हैं। वो तो है जड़ झाड़ और ये है शिव बाबा क्या है, चैतन्य बीज। और फिर ये चैतन्य मनुष्यों का झाड़, तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ये ज्ञान होता नहीं। वो जड़ बीज और झाड़ का तो ज्ञान सब में है, लेकिन चैतन्य बीज और जो चैतन्य झाड़ बाबा कहते उसका ज्ञान किसी को भी नहीं है। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी तो मनुष्यों का ही होगा ना। ये है चैतन्य क्रिएशन, ये मनुष्य का झाड़, ये है चैतन्य क्रिएशन रचना। बीज और रचना में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है और बीज तो कितना, गुठली कितनी होगी छोटी सी, और झाड़ देखो कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं, वो भी तो चैतन्य बीज है ना, तो कैसे उसे फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो कैसे फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब जड़ बीज में तो कोई ज्ञान नहीं है, ये है चैतन्य बीज रूप शिव बाबा, उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है। फिर कैसे कि कैसे उत्पत्ति पालना फिर विनाश होता है, ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, ये भी गुप्त है। अभी वो गुप्त रूप से बाबा नई झाड़ की कलम लगा रहे हैं ना, पुराना झाड़ तो खड़ा ही है परंतु नए झाड़ की कलम लगा रहे हैं हम बच्चों द्वारा, तो ये है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, अब दुनिया वालों को थोड़ी पता है कि ये जो ज्ञान यहाँ मिलता है ये नई झाड़ का कलम लग रहा है, ये तो किसी को पता नहीं है। तो ये ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं, तुम जानते हो ये कलम लग रहा है। अभी तो सब पतित बन गए हैं, अच्छा बीज अच्छा, फिर बाबा कहते हैं सब पतित तो बन गए हैं, अच्छा बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था, कौन था पहला पहला पत्ता, श्री कृष्ण। सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, वैसे दो पत्ते निकलते हैं बीज से जब पहले पहले शुरू होता है ना, तो दो पत्ते निकलते हैं, तो फिर एक बाबा कहते हैं श्री कृष्ण और फिर श्री राधे, ऐसे हमारे चित्रों में भी ऐसे दिखाया है, शिव बाबा बीज और उनसे श्री कृष्ण और राधे निकलते हैं, राधे कृष्ण। तो बाबा कहते हैं सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे पहला पत्ता। फिर नया पत्ता तो छोटा होता है पीछे बड़ा होता है, तो इस बीज की कितनी महिमा है, सारी महिमा तो बीज की है, कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं फिर उनों की भी महिमा होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो मूल बात ही ये है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं। ज्ञान तो बाबा बहुत देते हैं, लेकिन मूल बात कौन सी है, हमें दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते, लक्ष्मी नारायण का चित्र अगर नहीं होता तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता कि हमको इस ज्ञान से इतना ऊंचा बनते हैं। कैसे बनते हैं, वो लक्ष्य तो हमारे सामने होगा तभी तो हम समझेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अगर ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता, ये चित्र बहुत काम के हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है, सब देवी देवताओं की पूजा होती है ना, तो भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है। और ज्ञान मार्ग में क्या है, इन चित्रों की हम पूजा नहीं करते हैं, क्या करते हैं बाबा कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर हम जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को देखेंगे तो उस समय क्या सोचेंगे, उनकी पूजा तो नहीं करेंगे, हमें पता है कि हम ये बन रहे हैं, तो इनको देख करके नशा चढ़ेगा। और भक्त लोग इनके सामने जाएंगे तो सिर नीचे करेंगे, समझेंगे हम तो पतित है और ये तो पावन है, तो कोई उनको नशा नहीं चढ़ेगा और ही बस भिखारी बन के मांगेंगे। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसा बनना है। हम कई बार सुनाते हैं ना, कि जब मंदिर में जाने से पहले घर में बताते हैं, मैं जरा मंदिर जाता हूँ दर्शन करने जा रहा हूँ। लेकिन जब मंदिर में आते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और उनकी आंखें बंद और हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं मैं पतित हूँ, आप पावन हो, मैं पुजारी हूँ, आप पूज्य हो, माना अपनी ग्लानी करते हैं और देवताओं की महिमा गाते हैं और उनकी आंखें बंद है जो करते हैं। और देवताओं की जो मूर्ति है उनकी आंखें तो खुली होती है, तो किसने किसका दर्शन किया? हाँ भाई, भक्तों की आंखें बंद और देवताओं की आंखें खुली, तो किसने किसका दर्शन किया? भक्तों ने देवता का किया दर्शन या देवताओं ने भक्तों का किया कि मेरे भक्त देखो कैसे पतित है और हम कितने पावन है? तो अपना दर्शन कराने आते हैं, जैसे कि क्योंकि उन जैसा बनना ये तो उनकी बुद्धि में लक्ष्य नहीं है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? सबसे जास्ती शिव के मंदिर, सबसे जास्ती हर गांव में लक्ष्मी नारायण का मंदिर न भी हो पर शिव का मंदिर जरूर होगा। हाँ, मैं एक चुटकुला कहीं पढ़ा था कि एक गांव में शिव का मंदिर नहीं था, तो वो गांव वाले फिर अपने जो पंचायत होती है उनको कहा कि हमारे गांव में एक शिव का मंदिर होना चाहिए। तो पंचायत ने कहा कि अच्छा तुम लोग बताओ कहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं। तो एक पीपल का पेड़ था, तो कहा इस पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द हम यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, चलो बनाओ। तो भाई इसका नाम क्या रखेंगे, पीपल के पेड़ के आगे तो उनके साथ है तो इसीलिए नाम रख दिया पीपलेश्वर महादेव हो गया, क्योंकि पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द है। तो देखो ऐसे ही फिर नाम पड़ गए ना, कितने नाम पड़ गए शिव के मंदिरों के। तो बाबा कहते हैं तो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली रचना के मंदिर होंगे, तो पहली रचना कौन सी है? श्री कृष्ण या फिर श्री लक्ष्मी नारायण, तो राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण ये पहली रचना है, उनके मंदिर है। तो पहली रचना ये लक्ष्मी नारायण है, शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती है। बाबा कहते हैं तो माताएं ये ज्ञान दूसरों को देती है तो परंतु तुम्हारी पूजा नहीं होगी। हमारी पूजा क्यों नहीं होती है? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, उनकी पूजा नहीं होती है, वो तो पढ़ाती है ना। अब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, अब टीचर की थोड़ी कोई पूजा होती है, बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो, तो इसीलिए हमारी कोई पूजा नहीं होगी। अब गुरु पूर्णिमा के दिन कितने गुरुओं की पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। तो यहाँ भी माताएं आएंगे, भाई बहने आएंगे, तो बहनों को तो बहुत गिफ्ट देते हैं भाई गुरु हमारी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम टीचर हो बस, तुम गुरु नहीं हो, तुम पूजा अपनी नहीं करा सकते हो। ब्रह्मा बाबा ने तो पांव भी छूने नहीं दिए, बच्चे पांव छूते थे, बाबा कहते थे भगत, हाँ पांव भी बाबा छूने नहीं देते थे। तो माताएं तो ज्ञान देती, उनकी पूजा नहीं होती है, वो तो पढ़ाती है ना। अब बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? हम कोई शिवलिंग की भी पूजा नहीं करते, क्योंकि वो तो वही हमको पढ़ा रहे हैं। तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। हम भी टीचर बन करके चलो पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं गुरु भाई हो, जैसे शिव बाबा टीचर है तुम भी टीचर बन के पढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। तुम जब पढ़कर, अब कब पूजा होगी हमारी? तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे, क्योंकि ये ज्ञान तो सत्युग में होगा नहीं ना, फिर द्वापर में हमारी भक्ति होगी। तो तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी, क्योंकि ये ज्ञान तो भूल जाएंगे। अब भूल जाएंगे और फिर हमारी पूजा होगी द्वापर में, तो जैसे पढ़कर फिर अनपढ़ बन गए तब पूजा होती है, तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी। हमको ऐसा देवता बनाते जो है उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, तो पहले जिसने बनाया इतना ऊंचा देवता उनकी पूजा शुरू होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। जो पूज्य बने उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। फिर क्या होगा? फिर गिरते गिरते पांच तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं, पांच तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। आप पांच तत्वों में माना सब कुछ, पांचों ही तत्वों की पूजा करते हैं। आजकल तो भक्ति मार्ग में वो टिवाटे की पूजा करते हैं, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं ना वहाँ भी पूजा करते हैं। हम तो कई बार देखते हैं ना, तो यहाँ ही अभी यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो तीन रास्ते बनते हैं, एक वो मिनिस्टर्स कॉटेज और एक नक्की लेक और ये अपना यहाँ पांडव भवन का रोड, तो वहाँ बीच में तीन रास्ते मिलते हैं। तो वहाँ भी हम कई बार देखते हैं सिंदूर पड़ा है, वहाँ फूल पड़े हैं, और उस टिवाटे के तीन रास्ते जहाँ मिलते उसकी पूजा करते हैं। अब ये तीन का महत्व क्या है? बाबा कहते ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसीलिए शिव के साथ वो त्रिपुंड दिखाते हैं ना, ये तीन रेखाएं दिखाते हैं, त्रिशूल दिखाते हैं, ये तीन का महत्व है, इसलिए तीन का बहुत महत्व रखते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारी पूजा होगी नंबर वार। फिर गिरते गिरते पांच तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर तो पांच तत्वों का है ना, शरीर की पूजा माना पांच तत्वों की पूजा। शरीर पांच तत्वों का है ना, तो पांच तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही हो जाती है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है, ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वो कब था ये नहीं जानते, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह ही नहीं सके, कल की बात भी भूल जाते हैं तो लाखों वर्ष की बात क्या याद रहेगी। कभी किसकी बुद्धि में रह ही नहीं सके लाखों वर्ष की बात। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू धर्म भी कह नहीं सकते हाँ, परंतु हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह न सके, मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र हैं, इसीलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, हाँ कन्याओं को नमन करते हैं भारत में, कुमारों को नमन नहीं करते, कुमारियों को नवरात्रियों में कुमारियों को नमन करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? हाँ, मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। इसलिए देखो, यज्ञ में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो अधिकतर तो सब बहनें ही आई ना, बहनों को ही साक्षात्कार हुआ, कोई भाई को साक्षात्कार नहीं हुआ, बहनों को ही हुआ। और वो बहनें ही कैसे बाबा के पास भाग करके आई, तो भाई तो थोड़े थे शुरू में, थोड़े होंगे, लेकिन बाद लास्ट में तो चार भाई बचे थे हमारे। एक अर्जुन दादा था, विश्व रतन दादा था, विश्व किशोर दादा था और आनंद किशोर दादा था। ये हमारे चार मुख्य भाई थे शुरू शुरू के आदि। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी समझते हो बरोबर, ये ज्ञान की बड़ी नदी है। कौन? ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, इसीलिए इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ज्ञान नदी भी है और फिर ये पुरुष भी है, हाँ, पुत्रा। तो पुत्रा और पुत्री, तो पुत्रा हुआ तो मानो जैसे पुरुष है। तो ज्ञान नदी भी है फिर पुरुष भी है, ये है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी। सचमुच देखा जाए जितनी भी नदियां हैं, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। और वो ब्रह्मपुत्रा जाकर के कैसे आती है पहाड़ों से, आसाम वगैरह सब जाकर, फिर आखिर कहाँ जाकर के कलकत्ता में मिलती है। तो कलकत्ता में गंगा भी मिलती है, ब्रह्मपुत्रा भी मिलती है, तो वहाँ नदी और सागर एक जैसा लगता है। वहाँ कलकत्ता में आप जाएंगे और उसी को कहते हैं डायमंड हार्बर, गंगा सागर। वहाँ बहुत मेला लगता है गंगा सागर पर भी कलकत्ता में। तो ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है, मेला भी वहाँ लगता है। परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि ये जो मेला है नदी सागर का, ये किसका यादगार है? ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वो तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है, उन्होंने तो ब्रह्म फिर ईश्वर को भी कह दिया है, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वो होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। अब ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। शिव सागर ब्रह्मा नदी में प्रवेश करते तो सागर और मेले और नदी का मेला है। तो बाबा कहते ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये गुह्य बातें समझने की है जो प्राय लोक हो जाती है। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। राजयोग सिखाया फिर दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में तो शास्त्र होते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र नहीं होते। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसीलिए फिर परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है परंपरा कहना, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। लक्ष्मी नारायण क्या थे? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। अभी पुजारी पतित बने हैं, सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वो भी ड्रामा में है। आदि शंकराचार्य ने आकर के निवृत्ति मार्ग स्थापन किया, बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। इसको सन्यास धर्म कहा जाता है, घर बार का सन्यास कर जंगल में चले जाते हैं। अब वो है हद का सन्यास, रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है, जंगल में चले गए तो क्या हुआ, है तो ये पुरानी दुनिया ही ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे, तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं, 5000 साल का तो पूरा हिसाब निकाल सकते हैं, लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी रह न सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं, तुम सब के ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वो गिनती थोड़ी कर सकते हैं, अब इतनी जनसंख्या है कहाँ तक गिनती करते रहेंगे, बढ़ती जा रही है, जानवरों की गिनती क्या कर सकेंगे, वही बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ बाबा कहते क्या गिनती थोड़ी कर सकते हैं, इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं, कहाँ गिनने बैठेंगे। 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताते हैं, तो द्वापर उसका डबल, त्रेता उसका ट्रिपल और सतयुग उसका 4 गुना, तो कितना हो गया। तो बाबा कहते हैं लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है, तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से क्या याद आएगा, आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है, शिव बाबा तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है, बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर है झाड़ नीचे है, उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो कि जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य सब हू बहु रिपीट करेंगे, सब हू बहु रिपीट करेंगे, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना तो हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से जापान से आई, सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़े होंगे, ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज यहाँ अभी आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आती थी, 60s में गेहूं आदि आती थी, सतयुग में कहाँ से आएंगे, आएंगे थोड़ी कहाँ से, और कोई देश से आएंगे थोड़ी, वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती है। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती है। अब एक घर में चीजें हो, अब एक बच्चा है तो उसको सब मिले, फिर 2 बच्चे होंगे तो वो आधे में बढ़ जाएगा, 3 होंगे तो वो 3 में बढ़ जाएगा, तो फिर हर एक का अपना धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। तो यहाँ धर्म वृद्धि को पाते हैं तो उनके साथ सब चीजें भी कम होती जाती है। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं है, कोई इम्पोर्ट नहीं करते हैं। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती, वहाँ की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है, मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। साइंस की मुख्य चीज अभी कौन सी जो नुकसान कारक है, विज्ञान की सबसे बड़ी बुरी चीज एटॉमिक बॉम्ब्स, सबसे बुरी चीज एटॉमिक बॉम्ब, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा, उसकी आत्मा में नूंद है कि ये एटम बॉम्ब हाँ कैसे बनाना है, तो अपने आप इमर्ज होता है। तो पहले उनकी आत्मा में ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा, जब समय आता है तब उनमें वो ज्ञान आता है, जिसमें सेंस होगा वही काम करेंगे और फिर दूसरों को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बचता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। भगवान जो इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, इनसे ऊंचा ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, इससे ऊंच कोई नॉलेज है ही नहीं। ये वो है माया की नॉलेज, दुनिया में जो शिक्षा देते बाबा कहते वो है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वो लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं उस समय, साठ और अड़सठ के समय, मतलब उस समय बहुत कोशिश कर रहे थे मून में चंद्रमान में जाने की, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये सब माया का पॉम्प है, बहुत शो है माया का, बहुत शो करते हैं। अति डीपनेस में जाते हैं, प्रकृति की भी गहराई में जाते हैं, तो अति में अगर जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। अति डीप में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे, बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं कि इनसे ये विनाश होगा, वो भी जानते हैं, लेकिन फिर वो क्या कहते, कोई प्रेरक है जो हमसे ये बनवा रहा है, तो उनकी आत्मा से ही वो निकलता है और वो बनाते हैं विनाशकारी चीजें, तो इनसे ये विनाश होगा, ये सब जानते भी हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार ये बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है, ये गुप्त ज्ञान है, इसका सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों के सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने की बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य रचना को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती, इसी नशे में रहना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो। कौन सा पाठ निरंतर याद हो? एक बाप दूसरा न कोई, तो क्या होगा, तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, उनके अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, ये है उस समय की कमाल। किस समय की? जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, उस समय कमाल है पॉइंट को याद करना। हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई, ये याद करना जब कोई खींच रहा हो, कोई विघ्न आता हो, तो कभी बात नीचे खींचेगी कभी कोई व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई चीज खींचेगी, कभी वायुमंडल खींचेगा। अब ये तो होगा ही, उनका तो काम ही है नीचे खींचना। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अव्यक्ति शारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। कैसे करो? अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्ति दाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। पहले खुद मुक्त बनो, जीवन मुक्त। आज तो सब आत्माएं प्रकृति भगत सब मुक्त हो जाए। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस है। डेट कॉन्शियस ब्रह्मा बाप है। बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं, डेट बताओ कब ये बनेंगे कर्मातीत, कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। कर्मातीत हो गए माना जैसे जीवन मुक्त, तो ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। बहुत काल का राज्य भाग्य अधिकारी कैसे बनेंगे? जब बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का यहाँ अभ्यास होगा, जीवन में रहते सब बातों से मुक्त। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से नीचे बट्टी शुरू हो रही है मधुबन निवासियों की मानसरोवर में। यहाँ से भी कुछ भाई बहनों ने अपना नाम तो दिया है, तो जिन्होंने भी अपना नाम दिया है नीचे मानसरोवर भट्टी के लिए, तो वो शाम को 5 बजे नीचे पहुंच जाएं। 2 दिन वहाँ रहेंगे, 6, 7 और 8 को सवेरे वापस आएंगे। ओम शांति।